Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनकर के पहुंचे राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने अपना स्वागत भाषण दिया और वहां सभी सीनेटर्स एकत्रित हुए थे। उन सब से वो मिल रहे थे, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एक व्यक्ति जो बहुत ही धनाढ्य था, वो भी सीनेटर थे, उन्होंने हंसी हंसी में कहा कि मिस्टर लिंकन, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार के लोगों के लिए जूते बनाया करते थे। जब उन्होंने ये बात कही तो सारे सीनेटर्स हंस पड़े, लेकिन लिंकन बहुत ही गंभीर थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे पिताजी जूते बनाया करते थे आपके परिवार के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि यह बहुत सारे ऐसे सीनेटर्स होंगे जिनके परिवार के लिए भी मेरे पिताजी जूते बनाया करते, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाया करते थे, वो एक्सीलेंट थे अपने काम में, और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कंप्लेन आपके परिवार को रही होगी या आपको रही होगी। लेकिन फिर भी यदि कोई कंप्लेन है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी जूते बनाने आते हैं और मैं भी आपको जूते बना करके दे सकता हूँ। जब उन्होंने बहुत ही सादगी से, बहुत ही शालीनता से ये बात कही तो हंसते हुए लोगों के मुख बिल्कुल शांत हो गए और सभी गंभीर हो गए। और वास्तव में उन्होंने आगे एक बात ये भी कही कि मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी जूते बनाते थे, मोची थे, और वो अपने कार्य को बहुत बेहतरीन ढंग से किया करते थे, मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गर्व है। तो मित्रों, दो तरह से बातों को लिया जा सकता है। इस बात से हम दो बातें सीख सकते हैं। एक तो ये कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उस कार्य को बहुत ही परफेक्टली करना, उस कार्य को करने में गर्व महसूस करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि सामने वाला व्यक्ति यदि हमें हर्ट करना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, तो हम तब तक अपमानित महसूस नहीं करते जब तक कि उस बात को हम स्वीकार नहीं कर लेते या जब तक उस बात को हम अपने अंदर नहीं ले लेते। इसीलिए कोई हमें कुछ भी कहता है, लेकिन उस चीज को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो सचमुच उस चीज का सुंदर से सुंदर हम जवाब दे पाते हैं, हर्ट भी नहीं होते और सामने वाले व्यक्ति को एक सुंदर सा जवाब भी मिल जाता है। हमारे साथ भी जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित होती होंगी, लेकिन कई बार हम कुपित हो जाते हैं। कुपित होने की बजाय, डिस्टर्ब होने की बजाय, अपमानित महसूस करने की बजाय, क्यों ना एक ऐसा सकारात्मक उत्तर दिया जाए, एक ऐसी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाए ताकि बातें भी समाप्त हो जाए और आगे वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए एक सुंदर सा सकारात्मक सबक भी मिल जाए। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय प्राता जी का। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू।
कितना पॉजिटिव या सकारात्मक व्यक्ति यदि रहता है, प्राता जी, लिंकन जी तो लिंकन जी ही थे, लेकिन यदि हम भी हों तो सचमुच सिचुएशन बदल जाती है।
क्योंकि कोई भी कार्य मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं बनाता
जी।
कार्य को कौन कितना परफेक्शन से करता है और अपने कार्यों के प्रति कौन कितना जिम्मेदार है। एक व्यक्ति झाड़ू लगाने का कार्य कर रहा है, लेकिन वो बहुत जिम्मेदारी से करता है, तो वो उससे बड़ा काम भी बहुत जिम्मेदारी से कर लेगा, फिर उससे बड़ा मिलेगा वो भी बहुत जिम्मेदारी से कर लेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, लोग उनके मजाक करने, ये अपमानित करने के लिए ही कहते होंगे चाय बेची है, लेकिन उन्होंने चाय को ही एक ऐसा मुद्दा बनाया कि वो चढ़ गए एकदम से, और अब भी वो कहते हुए शर्माते नहीं है कि हम तो सबको चाय पिलाते हैं, देखो प्रेसिडेंट आए थे उनको भी अपने हाथ से चाय पिला दी अमेरिका वाले को, और गर्व महसूस कर,
मतलब वर्क इज वर्शिप की जो बात है वो भावना होनी चाहिए।
और चाय बनाना या पीना ये कुछ हीन कार्य तो नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाना भी, झाड़ू लगाने वाले ही ना हो तो सफाई कैसे होगी, और सफाई हम सबको प्रिय है।
जे जे।
तो वास्तव में देखिए, स्पिरिचुअली बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, वही मुझे याद आ रही थी लिंगन साहब की बात सुनकर, कि जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं उनको अपमान फील नहीं होता, और जो आत्माएं देह अभिमान में ज्यादा रहती हैं उन्हें हर छोटी बात भी अपमान के रूप में फील होती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हम श्रेष्ठ स्वमान में रहें, और लिंकन या हमारे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है दोनों ही बहुत अच्छे स्वमानधारी व्यक्ति हैं जिनको ये चीजें फील नहीं होती, और जब वो कार्य जिम्मेदारी से करते थे तो ये कार्य भी फुल जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। किसी भी चीज को अपमान रूप में न लेना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और अपमान को भी स्वमान में बदल देना ये स्पिरिचुअलिटी है। इसकी ओर हम बढ़े तो सचमुच हम बहुत महान बन जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल व्रता जी, एक विशेष बताती है कि जैसे इनके अंदर ये जो एक बात देखी गई कि हाँ एकदम पॉजिटिव रहे, बातों में बिल्कुल विचलित नहीं हुए। आमतौर पे व्यक्ति ऐसे समय पे विचलित हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है या कुछ ना कुछ बोल देता है। तो जिस स्वमान की आप बात कर रहे हैं कि हम ऐसे स्वमानों में रहें, तो ये स्वमान है क्या? कैसे, मतलब कौन सी बातें अपने अंदर रखें, स्मृति में रखें, किनकी प्रैक्टिस हो ताकि ऐसी विपरीत सिचुएशन को भी सहज हैंडल कर सकें?
ये एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है और मैं देखता आया हूँ कि स्वमान से मनुष्य पॉजिटिव होता है
जी।
स्वमान से उसमें ये अपमान की और अभिमान की फीलिंग बहुत कम होती है। स्वमान से मनुष्य के विचार बहुत महान ब्रॉड हो जाते हैं, और सच तो ये कि स्वमान मनुष्य को बहुत शक्तिशाली और निर्भय बनाता है। स्वमान किसे कहते हैं? जब भगवान इस धरा पर आए तो उसने हम सभी आत्माओं को हमारे मूल स्वरूप की याद दिलाई जो हम भूल गए थे। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण या तो अभिमान था, मैं बड़ा हूँ, जैसे इस केस में था, लिंगर साहब को जो कह रहे थे वो बड़े सेठ थे, वे मैं सेठ हूँ, इट वॉज बॉडी कॉन्शियसनेस। और या कोई बहुत बड़े पद पोजिशन पर है, मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, ये देह अभिमान। और इसका एक निगेटिव पहलू कि जब हम मंदिरों में जाते रहे तो देव देवताओं के आगे हाथ जोड़ के खड़े होकर कहते थे मैं बड़ा पापी हूँ, मैं तो नीच हूँ, कपटी हूँ, आप तो दयावान हो, आप महान हो, आप देवता हो, मुझे क्षमा करो, मुझे सद्बुद्धि दो। एक ये देह अभिमान का ही एक निगेटिव पहलू ये भी है
जी।
भगवान ने आकर याद दिलाया तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे नीच नहीं हो सकते, तुम महान हो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम मेरी संतान हो, सर्वशक्तिवान की संतान कमजोर नहीं हो सकती, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मोस्ट पावरफुल सोल्स हो, तुमने इस संसार में बड़े बड़े कार्य किए हैं। देखो हम तो इस जन्म में आए तो पिछले जन्म को भूल गए, लेकिन भगवान जो सब कुछ जानता है उसने हमें याद दिलाया कि थ्रू आउट द साइकिल फ्रॉम गोल्डन एज टिल कलयुग एंड तुम सब हीरो एक्टर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटीज है। उसमें भी याद दिलाया पहले दो युग तो तुम देवता थे, तुम्हारे अंदर संपूर्ण देवत्व है, तो जिन्होंने सुना उनको फील हुआ इट्स ट्रू, और एक जागृति आई, वो देवत्व जगने लगा, सोई हुई शक्तियां जगने लगी। इसको कहते हैं स्वमान। तो इसको स्वीकार करना, उसको फिर सेकेंडली याद करना, फिर उसकी गुड फीलिंग में रहना, इससे हम स्वमान का स्वरूप बन जाते हैं, हमारा अभिमान भी नष्ट हो जाता है। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि घरों में रहने वाले लोग ऑफिस में बैठे, बिजनेस सेंटर में बैठे, अपने घर में बैठे, अगर किसी स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो उनसे उसी तरह के वाइब्रेशंस फैलते हैं, पूरे घर में फैलते हैं, पूरे ऑफिस में फैलते हैं, और इसका इफेक्ट उन पर, साथियों पर और कर्म की सफलता पर बहुत गहरा पड़ता है।
बिल्कुल, ये तो बहुत ही गहरी और सुंदर बात है व्रता जी की। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें जो भगवान हमारे लिए कहते हैं, शायद हम भूले हुए हैं इन चीजों को कि भगवान हमें किस नजर से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसा कुछ राइटअप में, कुछ ऐसे ऑडियोज, कुछ ऐसे व्रता जी अवेलेबल हो सकते हैं सबके लिए, ताकि जिसे सुने और व्यक्ति को वो पहचान में आए कि हाँ मैं कौन हूँ और मैं मुझे क्या करना है आदि आदि?
इसी की जरूरत है बहुत ज्यादा
जी।
मैं इससे पहले कहूंगा कि स्वमान की प्रैक्टिस करने से मनुष्य बहुत जल्दी परमात्मा से जुड़ जाता है। और मुझे बचपन से ही एक बहुत सुंदर बात जो शिव बाबा की अट्रैक्ट करती थी, जिसको मैंने अपनी फीलिंग्स में लाया, जिससे मुझे ये चीजें अपने जीवन में लाने में बहुत मदद मिली। बाबा सामने बैठकर कहते थे बच्चे मैं तुम्हें जितनी ऊंची नजर से देखता हूँ तुम भी अपने को वैसी ही ऊंची नजर से देखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान हो, तुम्हारी संसार में उपस्थिति संसार के लिए बड़ी कल्याणकारी है। तो बहुत गुड फीलिंग रही। तो इसके लिए सीडी मिलती है, स्वमान नाम से ही सीडी है, और भी क्लासेज भी होती हैं हमारी मुरलियों में, रोज जो ईश्वरीय महावाक्य हम सुनते हैं या अव्यक्त महावाक्य जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी स्वमान की बहुत सुंदर बात आती है। जिन्होंने ज्ञान लिया है, योग सीखा है, जो शिव बाबा के बच्चे बने हैं वो जानते हैं, या जिन्होंने भगवान को इस धरा पर अवतरित होते हुए सालों से देखा है, वो जानते हैं कि बाबा जब दूसरे के तन में आते थे तो शुरुआत ही एक स्वमान की याद दिलाकर करते थे। मैं आज ऐसे ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ जो सृष्टि का श्रृंगार हैं, जो बहुत महान हैं, जिनके प्रकाश से सारा संसार से अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है। तो हम सब सामने बैठकर जब इस गुड फीलिंग में आते थे, हमें रियलाइज होता था हम कौन हैं, हम ये नहीं हैं जो हम सोच रहे हैं। तो एकदम जागृति होती थी, इससे हम बिल्कुल पॉजिटिव होते गए, हमारे विचार सुंदर होते गए। तो सचमुच, और मैं इसमें ये भी जोड़ दूं, माताएं और पिताएं घरों में रहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, कहीं डांट डपट करते हैं। मैं ये कहा करता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को आदेश देते हैं, आदेश नहीं। तो जैसे भगवान ने हमें सिखाया, वैसे ही हम दूसरों को सिखाएं, पहले उन्हें स्वमान याद दिलाएं, तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें अच्छा पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बनना है, अच्छी अच्छी डिग्री लेनी है, इंजीनियर बनना है, ये करना है। पहले उन्हें जरा स्वमान दिलाओ, फिर कहो बस ये बात थोड़ी सी कर लो तो बहुत अच्छा होगा। तो देखो बच्चे कैसे आपकी बात मानते हैं।
जी, मतलब परमात्मा पिता भी इसी ढंग से पढ़ाते हैं या शिक्षाएं देते हैं। और स्वमान का भाव जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रताप जी, वो यही हुआ कि हम दूसरों की विशेषताओं को, अच्छाइयों को वो याद दिलाएं और उन्हें बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, तो शायद उनके अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो
जाएंगी। बिल्कुल, मैं ये बात अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि दूसरे को शिक्षा देने का, दूसरे को पढ़ाने का सुंदर तरीका यही। नहीं तो माताएं घर में क्या करती हैं, जब गुस्सा होंगी ना बच्चों पे, अब तुम तो कोई काम का नहीं, नालायक है, जन्म लेते ही मर जाता तो बड़ा अच्छा होता, तुम बुद्धू है, ऐसे ऐसे शब्द बोल के पहले वातावरण को भारी कर देती है
जी।
और बच्चा भी फिर दूसरी फीलिंग में रहता है, जवाब देने के लिए तैयार रहता है। कई कई तो बच्चे कहते हैं तुमने ऐसे बुद्धू बच्चे को जन्म क्यों दिया है, दोषी तुम हो। बच्चे भी तो आजकल तेज तरह ना। तो ये तरीका नहीं है, हम तो साक्षी होकर देखते आए भगवान हमें कैसे पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं। भगवान ने आत्माओं को सुधारने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई, यानी कितने गिर चुकी थी आत्माएं एकदम तम प्रधानता की अंतिम सीमा पर, विषय विकारों के गर्त में डूबे हुए, और उन्हें स्वमान दिला दिला कर निकाल दिया, बाहर जगा दिया, अनेक शराबियों की शराब छुड़ा दी, व्यसनों में लिप्त आत्माओं को निर्व्यसनी बना दिया। तो ये हम साक्षी होके देखते आए कि ये प्रभु की अपनी, वो सुप्रीम शिक्षक है ना, शिक्षक है, तो उसकी ये कितनी सुंदर टेक्निक है पढ़ाने की। ऐसी टेक्निक अगर आज के सब टीचर भी सीख जाएं तो सचमुच बच्चे उनके पीछे पीछे सम्मान सहित उनका बहुत आदर हो जाए और जो कुछ वो पढ़ाए उसको ग्रहण करने लगे।
इस जागृति की मुझे लगता है प्रताप जी सचमुच बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे बचपन में हम वो कहानी भी सुना करते थे कि एक शेर का बच्चा जो था वो उनके साथ भेड़ियों के साथ चला गया, और उसके बाद बड़ा होने के बाद भी भेड़ियों के समान ही व्यवहार करता था, बोलता था। एक बार शेर ने उसे देखा और उसे याद दिलाया कि नहीं, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम तो शेर हो, पानी में भी उसको दिखाया, तो उसने धारणा शुरू कर दिया। मतलब एक याद कोई दिलाए, स्मृति दिलाए, तो हमारे अंदर की वो सब शक्तियां जागृत हो जाएं, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है।
बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और स्टूडेंट से पहले टीचर्स को इसकी आवश्यकता है। क्योंकि मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण करने वाले ये सब स्टूडेंट्स हैं। इनमें से न जाने कितने लोग महान बने, कितने लोग अच्छे वैज्ञानिक बन जाएं, कितने लोग अच्छे क्रिएटिव हो जाएं, इन पे अगर ध्यान दिया जाए तो कितना सुंदर हो जाए सब कुछ। लेकिन उन पे ध्यान देने के लिए शिक्षकों पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, एक अनुभव मैं सुनाना चाहता हूँ जो हमारे शिक्षकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी अभी कुछ दिन पहले, एक मास हुआ होगा, एक शिक्षिका बहन हमारे पास आई जो कॉलेज में पढ़ाती है। कहा कि एक बहुत सुंदर अनुभव आपको सुनाने आई हूँ। मैंने कहा अनुभवों का ही तो वेलकम हम करते हैं ताकि सब लोग सीख सके। कहा मैं क्लास शुरू होने से पहले अपने को एक स्वमान में स्थित करती हूँ और सभी बच्चों को पहले देखती हूँ, ये आत्माएं हैं, इसमें मुझे आधा मिनट लगता है, और बीच में भी मैं एक बार देख लेती हूँ ये सब आत्माएं बैठी हैं, एंड में भी जब पीरियड समाप्त होता है ये सब आत्माएं बैठी हैं, तो कुछ दिन अभ्यास करने के बाद मतलब 2-3 मास के बाद मुझे फील हुआ कि सभी बच्चों की एकाग्रता बढ़ गई है। अब वो डिसिप्लिन हो गए। जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़ के, मान लो ब्लैक बोर्ड पे कोई लिख रही हूँ, कुछ करती हूँ, या सामने बैठ के कोई लेक्चर कर रही हूँ, मैं देखती हूँ उन्हें ध्यान से, तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई नजर आती हो, तो चेहरे से पता लग जाता है ना। तो एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ये स्वमान के साथ। स्वमान से वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए मान लो 50 बच्चे सामने बैठे हैं, शिक्षक शिक्षिका अब उनको इस नजर से देखती है, ये आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं, दे आर ग्रेट सोल्स, बच्चे हैं कितने पवित्र बैठे हैं, इस नजर से देखती है, तो इससे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो बच्चे ग्रहण करेंगे, उसका इफेक्ट धीरे 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 बच्चों पर आता रहेगा। और मान लो एक शिक्षक पढ़ाने आया और बच्चे थोड़ा शोर कर रहे थे, और शिक्षक ने सोचा क्या ये बंदर के समान बच्चे हैं, कैसा कलयुग आ गया, घोर कलयुग है, किसी की सुनते ही नहीं, इन्हें टीचर्स के लिए सम्मान ही नहीं रहा, तो एकदम निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होने लगी
जी।
बच्चों पर वो गई और वो और शैतानी करेंगे, सुनेंगे ही नहीं,
मतलब इसकी ओर शायद ध्यान नहीं है कि हमारे विचारों को भी वो रिसीव कर रहे हैं और उनकी शरारत, उनकी जो बदमाशियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ब्रदर जी, ब्रह्मा कुमारी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, और ये इन स्पिरिचुअल बातों को लोगों को दे के, तो ये ऐसा क्यों नहीं करती, मतलब विद्यालय की तरफ से ऐसा एक इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता कि सभी शिक्षकों को भी और विद्यालयों को भी इस प्रकार की जो स्पिरिचुअल शिक्षा है वो दी जाए, ताकि अंदर की जो शक्तियां हैं, गुण हैं, जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं स्वमान की, वो सबकी जागृत हो जाए और देश और समाज बहुत सुंदर हो जाए।
बिल्कुल, हमारे यहाँ कई जगह कर्नाटक आदि में तो बाकायदे ये ट्रेनिंग सेंटर ही खुला हुआ
जी।
और गवर्नमेंट ही टीचर्स को भेजती है वहाँ ग्रुप्स 200 के 250 के, और वो 15 दिन वहाँ रहते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, कई उनमें से राज्यों भी बन चुके हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये सरकारों पर निर्भर करता है ना, अब उनका इसमें कितना इंटरेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी को कहीं रिलीजन तो नहीं मान लेते, कह रहे तो अपने रिलीजियस बात करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो इन सबसे अलग है ना, इट्स फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। तो ये सचमुच बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं या जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं, सेक्रेटरीज हैं एजुकेशन के, उनको इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चों पे तो अच्छा असर होगा ही, लेकिन शिक्षक भी अपनी पढ़ाने को एंजॉय करेंगे, और जब वो स्कूल या कॉलेज से घर आएंगे तो वो सिर पकड़ते हुए नहीं आएंगे, बहुत थक गया, बड़ी टेंशन, ये बच्चे तो तंग करने
आते ही बस फेंक देते हैं बच्चे, टीचर्स भी परेशान रहते हैं,
वो बहुत रिलैक्स होंगे, दोनों एंजॉय करेंगे।
तो ब्रदर जी, जैसे आपने कहा कि शायद धर्म समझ लेते हैं लोग, तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस जानना चाहूंगा, ताकि ब्रह्मा कुमारी जो दे रही हैं वो धर्म की बात नहीं है, वो तो मैं भी यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सभी लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब धर्म की तो कोई सीमा है नहीं या बाधा नहीं है, दीवार नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म को कैसे अलग करके हम समझें।
बिल्कुल, सबको जान लेना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसको हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, इट्स फॉर ऑल। इसलिए यहाँ किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, ये धर्म ग्रंथ पढ़ लो, ये धर्म ग्रंथ पढ़ लो, एक टोटल मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, क्यों इस संसार में आए, कहाँ से आए, अल्टीमेट हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब स्पिरिचुअल चीजें, और हम अपनी इनर पावर्स को, इनर क्वालिटीज को, अपनी इनर प्योरिटी को कैसे बढ़ाएं, इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। धर्म एक अलग चीज है, मान लो मुस्लिम धर्म, भाई उसमें नमाज पढ़नी है, लोगों को ये करने हैं, मस्जिद में जाना है, लेकिन देखिए मान लो मुस्लिम धर्म है, मैं उनकी बात करूँ, उनमें स्पिरिचुअलिटी इसको कहा जाएगा कि वो कुरान शरीफ पढ़कर रूह के स्वरूप में स्थित हो जाए, उनका नाता रूहानी बाप से जुड़ जाए, और रूह में जो क्वालिटी है, जो लाइट है, जो नूर है, वो चेहरे पर आ जाए, जीवन में आ जाए, इसको स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। बाकी ग्रंथ पढ़ना या ये नमाज आदि करना या और कहीं अपने तीर्थों पर जाना, ये सब धर्म कहलाता है। हिंदू धर्म में ऐसे लीजिए, लोग मंदिरों में जाएंगे, कोई कथा करेंगे, भागवत की कथा चल रही है भाई, 7 दिन तक चलेगी, 11 दिन तक चलेगी, पूजा पाठ हो रही है, मंदिरों में बच्चों को लोग लेकर जा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, शादी आदि में बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, ये सब धर्म। स्पिरिचुअलिटी हर धर्म का बीज एंड वन फॉर ऑल रिलीजन्स। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके हो, तुम्हारी क्या क्वालिटीज है, उनको जागृत कैसे किया जाए, ये सब स्पिरिचुअलिटी में आता है।
मतलब ये अंदर की चीज हो गई, जो आंतरिक विकास की
और
बात
ये
है,
बाहर की चीज।
बिल्कुल बिल्कुल, एक संत से किसी ने ये बात पूछी थी ब्रदर जी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि धर्म और अध्यात्म में भेद, शायद आपकी बात से मुझे लगता है कि वो रिलेट होगा, कि उन्होंने कहा कि केले के समान है, धर्म जो है वो बाहर का छिलका है और जो अध्यात्म है वो अंदर का गुदा है। मतलब बाहर जो दिख रहा है वो धर्म है, लेकिन जो अंदर है वो अध्यात्म है और उसी अध्यात्म की आवश्यकता है। तो ब्रदर जी, ये अध्यात्म की तो फिर सभी को आवश्यकता है, तो इस चीज को फिर समझाने के लिए कुछ विशेष प्रयास कि भाई चलिए जो सरकार में है या शिक्षा से जो जुड़े हुए फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये बात क्या समझाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है एक अच्छे इंसान बनाने के लिए, और ये ब्रह्मा कुमारियां दे सकती हैं।
बिल्कुल, हम लोगों की ओर से भी इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है, हर व्यक्ति तक हम पहुँचने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, और अब तो हमारा फील्ड बहुत विशाल हो गया है, करोड़ों तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं और बहुत लोग उसको रियलाइज भी कर रहे हैं।
आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं यदि लोहा ठंडा है ना तो उसे मोड़ा नहीं जा सकता, और यदि उसे गर्म कर दिया जाए तो उसे मोड़ना बहुत सहज हो जाता है। तो कई बार लोग हमें गर्म करने की कोशिश करते हैं अपनी उल्टी सीधी बातें कह के, और यदि हम गर्म हो गए अर्थात अपना आपा हमने खो दिया, फिर वो जैसा चाहे हमारे मूड को बदल सकते हैं, मूड को ऑफ कर सकते हैं, लंबे समय तक हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही बिगड़ी सी रहेगी, हम अपसेट रहेंगे। क्या हम ऐसा चाहते हैं या फिर उस सिचुएशन को टर्न कर देना चाहते हैं, चेंज कर देना चाहते हैं, जैसे लिंकन महोदय के जीवन से ही हमने देखा। और न केवल ये घटना मित्रों, यदि आप उनकी जीवन कहानी पढ़ें ना तो आप पाएंगे कि उनका जीवन असफलताओं से भरा रहा था। बचपन भी गरीबी में बीता उनका, जब वो थोड़े से बड़े हुए तब भी उन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया तो व्यवसाय में भी उन्हें नुकसान हो गया, वहां भी वो असफल हुए। प्रेम भी उनका असफल रहा, विवाह भी उनका असफल रहा, जब उन्होंने चुनाव लड़ा चुनाव में भी वो असफल रहे। लेकिन एक पति की बात और सुंदर बात, जो बात मुझे भी प्रेरित करती है, उन्होंने हार स्वीकार नहीं की बल्कि लगातार लगे रहे, लगातार प्रयास करते रहे, और अंततः लगभग जब उनकी उम्र 52 इयर्स की थी तब जाकर के वो देश के राष्ट्रपति बने। तब तक संघर्षमय जीवन रहा, असफलताओं से भरा हुआ जीवन रहा। कई बार छोटी मोटी असफलताएं हमें तोड़ देती हैं, मरोड़ देती हैं और हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा कर देती हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो महापुरुष हैं उनके जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि नहीं, हार मान लेना ही वास्तव में फाइनल हार हो जाती है, लेकिन जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हमारी हार होती ही नहीं है। तो हम हार स्वीकार ना करें, संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें, खुद पे विश्वास रखें, खुदा पे विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से आप भी जो चाहते हैं अपने जीवन में बनना वो बन जाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, अपने जीवन के ध्येय को आप प्राप्त करें। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।